ভূমণ্ডলীয় উষ্মন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ভূমণ্ডলীয় উষ্মন তাৎপর্য তথা মহত্ব। ভূমণ্ডলীয় উষ্মন या वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का सामान्य अर्थ होता है भूमंडलीय स्तर पर पृथ्वी की सतह तथा उसके संपर्क में आने वाली वायु का गर्म होना। जब विश्व स्तर पर वायु के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है तो उसे भूमंडलीय उष्मन कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या भूमंडलीय उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे जनित भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन, ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज से संबंधित है। इन समस्याओं के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे वायुमंडल की रासायनिक संरचना, गैसी संरचना, विभिन्न गैसों के प्राकृतिक अनुपात में परिवर्तन, ओजोन क्षरण, तीव्र गति से हरित गृह गैसों जैसे ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन खासकर वन विनाश आदि। इनमें से अधिकांश या यूं कहें सभी कारक मानव जनित हैं। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल की प्राकृतिक रासायनिक संरचना अर्थात गैसी संगठन में यदि प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो प्रकृति उसे आत्मसात कर लेती है, परंतु यदि मानवजनित कारकों से कोई इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह प्रकृति की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान समय में मानवजनित स्रोतों से वायुमंडल में हरित गैसों का इतनी तेजी से सांद्रण बढ़ रहा है कि भूमंडलीय स्तर पर तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति अस्पष्ट दिखाई पड़ रही है। भूमंडलीय उष्मन तथा वायुमंडल की रासायनिकी में परिवर्तन का संभावित नेट परिणाम होगा जलवायु में परिवर्तन। यह परिवर्तन स्थानिक मापक की दृष्टि से स्थानीय, प्रादेशिक या भूमंडलीय स्तर पर हो सकता है तथा कालिक मापक पर मौसम एवं जलवायु में अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भविष्य में होने वाली संभावित जलवायु परिवर्तनों के मनुष्य तथा प्रकृति पर दूरगामी प्रतिकूल दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित एवं भयभीत है। यदि जलवायु में भारी परिवर्तन होता है तो कई समस्याएं उठ खड़ी होंगी। बी हिमानीकरण, डी ग्लेशिएशन एवं सागर तल में धनात्मक परिवर्तन, सागर तल में उद्भार, सागर द्वीपी राष्ट्रों एवं सागर तटीय भागों का जलप्लावन से निमज्जन, सबमर्जेंस, वाष्पीकरण एवं वर्षण सहित वायुमंडलीय गतिकी में परिवर्तन, भूमंडलीय विकिरण संतुलन में अव्यवस्था, प्रकाश संश्लेषण और पारिस्थितिकी उत्पादकता में परिवर्तन, पादप एवं वनस्पति समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव, मनुष्य के स्वास्थ्य एवं क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव आदि। भूमंडलीय उष्मन एवं पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण वायुमंडल की रासायनिक संरचना में वायु प्रदूषण परिवर्तन का होना है। वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे औद्योगिक तथा नगरीकरण, तेजी से मानव जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादक प्रौद्योगिकी में तरक्की, बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग में परिवर्तन खासकर वनों का सफाया आदि स्रोतों से जनित वायु प्रदूषण के कारण होता है। राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीय उष्मन तथा उससे संभावित जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि भूमंडलीय ऊष्मन तथा उस कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन एवं भूमंडलीय पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्या वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए तब तक विकराल एवं डरावनी बनी रहेगी जब तक इस पर काबू नहीं पा लिया जाता। भूमंडलीय ऊष्मन के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक स्तर पर धरातली सतह तथा वायुमंडल के तापमान में क्रमशः मंद गति से तापमान में वृद्धि तथा भूमंडलीय विकिरण संतुलन में परिवर्तन को भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन प्राकृतिक तथा मानव जनित कारकों तथा दोनों तरह से होता है, परंतु प्राकृतिक कारणों द्वारा भूमंडलीय ऊष्मन तथा शीतलन अत्यंत मंद गति से लंबे समय में होता है तथा ऊष्मन एवं शीतलन की ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात ऊष्मन के बाद शीतलन तथा शीतलन के बाद ऊष्मन होता रहता है, परंतु मानव जनित भूमंडलीय ऊष्मन तेजी से होता है तथा उत्क्रमणीय नहीं होता, अर्थात एक निश्चित सीमा की प्रकृति के प्राप्ति के बाद वह दोबारा वापस नहीं हो पाता है। मानव जनित भूमंडलीय ऊष्मन से जलवायु में स्थानीय, प्रादेशिक तथा भूमंडलीय स्तरों पर अल्पकालिक से लेकर दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व औद्योगिक काल से पिछली सदी के अंत तक भूमंडलीय ऊष्मन या भूमंडलीय स्तर पर तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति तथा प्रतिरूप का कई वैज्ञानिकों, संगठनों तथा संस्थाओं ने अध्ययन किया है। इस संदर्भ में कई मॉडल भी तैयार किए गए हैं, परंतु वे परिणाम भी परस्पर विरोधी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जलवायु परिवर्तन के अध्ययन करने एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। आईपीसीसी लगभग 4 वर्षों में जलवायु परिवर्तन पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिकों ने वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए विश्वसनीय साक्ष्यों के आकलन के लिए सार्थक प्रयास किया है। कम से कम सन 1750 से लेकर 2000 ईस्वी तक वायुमंडलीय तापमान की प्रवृत्ति के निर्धारण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व स्तर पर विभिन्न मौसम केंद्रों में वायुमंडलीय तापमान तथा धरातलीय सतह के तापमान का विधिवत मापन तथा अभिलेखन सन 1880 से प्रारंभ हुआ, अतः इसके पहले के तापमान का अनुमान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भूमंडलीय ऊष्मन का एकमात्र संकेतक तापमान है, अतः तापमान की वृद्धि की प्रवृत्ति के निर्धारण में केवल वही साक्ष्य उपयोगी हो सकते हैं जो तापमान आधारित होते हैं। निम्नलिखित साक्ष्य धरातली सतह तथा उसके वायुमंडल के तापमान में वृद्धि तथा उससे जनित भूमंडलीय ऊष्मन के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। तापमान का अभिलेख, दूसरा पर्वतीय एवं महाद्वीपीय हिमनदों का पिघलना, तीसरा भूमंडलीय स्तर पर सागरी जल का ऊष्मन, चौथा सागर तल में उभार, पांचवा फर्माफ्रास्ट क्षेत्रों में हिमद्रवण के कारण संकुचन, छठा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी पर्वतों की हिमरेखा का स्थानांतरण, सातवां उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी रोगों का शीतोष्ण एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रसरण, आठवां ऋत्विक मौसम की परिघटनाओं में कालिक स्थानांतरण। पहला, वायु तापमान में वृद्धि। विश्वस्तरीय तापमान के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि भूमंडलीय स्तर पर औसत वायु तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व के औसत तापमान के निम्न आंकड़े से यह तथ्य सत्यापित हो जाता है। सन 1860 के बाद तापमान की प्रवृत्ति। सन 1860 ईस्वी से वर्तमान समय तक भूमंडलीय औसत तापमान में उतार चढ़ाव की निम्न प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला, 1860 से 1920 ईस्वी। भूमंडलीय औसत तापमान में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक असमान वृद्धि। दूसरा, 1921 ईस्वी से 1945 ईस्वी। भूमंडलीय औसत तापमान में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की स्थिर प्रवृत्ति। तीसरा, 1945 से 1975 ईस्वी। भूमंडलीय औसत तापमान में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की दोलनी प्रवृत्ति। उत्तरी गोलार्ध का उष्मन हुआ जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान लगभग स्थिर रहा। चौथा, 1976 से 1989 ईस्वी। भूमंडलीय उष्मन की औसत प्रवृत्ति चलती रही। भूमंडलीय औसत तापमान में 0.2 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। पांचवा, 1990 से 2000 ईस्वी। भूमंडलीय तापमान में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। बीसवीं शताब्दी सदी का सबसे गर्म दशक रहा। एक बार पुनः सुन लें, 20वीं सदी का सबसे गर्म दशक रहा। सन 1980 से सबसे गर्म 7 वर्षों में से 6 सर्वाधिक गर्म वर्ष इसी दशक में हैं। 20वीं सदी में तापमान में कुल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि दर्ज की गई। निष्कर्ष के रूप में यह व्यक्त किया जा सकता है कि कुल मिलाकर 20वीं शताब्दी में धरातली सतह के औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि भूमंडलीय औसत तापमान में प्रति 1000 वर्षों में तापमान की औसत वृद्धि दर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड रही है। एक अन्य मत के अनुसार सन 1880 से सन 1940 ईस्वी के बीच उत्तरी गोलार्ध में औसत वायु तापमान में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, क्योंकि इस अवधि में द्रुत गति से होने वाले औद्योगिकरण एवं जीवाश्म ईंधनों के जलाने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई। परंतु बढ़ते औद्योगिकरण एवं नगरीकरण तथा जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग के बावजूद सन 1940 ईस्वी के बाद उत्तरी गोलार्ध के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत सन 1940 ईस्वी से दक्षिणी गोलार्ध में लगातार परंतु मंद गति से तापमान में वृद्धि होती रही। परिणामस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में 1940 से 1960 के बीच 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हुई। एक अन्य स्रोत के अनुसार सन 1995 ईस्वी तक भूमंडलीय औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, जबकि दूसरे स्रोत के अनुसार 20वीं शताब्दी में 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.6 सेंटीग्रेड तक की तापमान में वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि सन 1997-98 ईस्वी में हिंद महासागर के सामान्य तापमान में 2 सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो गई, जिस कारण प्रलयकारी प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग की घटना हुई। इस कोरल ब्लीचिंग के कारण अंडमान निकोबार के द्वीपों एवं लक्षद्वीप के 70% से अधिक प्रवालों की मृत्यु हो गई। भूमंडलीय उष्मन का पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन ऑफ ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के पूर्वानुमान के लिए कई मॉडल विकसित किए गए हैं। पहला एस एच स्नाइडर मॉडल के अनुसार, यदि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण का 300 ppm का स्तर बढ़कर दो गुना 600 ppm हो जाता है, तो वायुमंडल के तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। दूसरा एस मनाबे तथा आर टी वेथरॉल के जनरल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार, यदि 1975 ईस्वी के स्तर के वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में दोगुनी वृद्धि हो जाती है, तो वायुमंडलीय तापमान में 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। तीसरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण के आधार पर 21वीं सदी में वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के पूर्वानुमान के लिए कई मॉडल विकसित किए गए। इस तरह वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण लगातार बढ़ता जाता है, तो तापमान में भी लगातार वृद्धि होती जाएगी। यदि 21वीं सदी के अंत तक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण 540 से 970 ppm भी हो जाता है, तो वायुमंडलीय तापमान में 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाने का अनुमान है। परंतु यदि विश्व समुदाय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करने में सफल हो जाता है, तो भविष्य में तापमान में वृद्धि एवं उससे होने वाले भावी जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचा जा सकता है। दूसरा हिमचादरों एवं हिमनदों का पिघलना। हाल के हिमचादरों एवं हिमनदों के निर्वर्तन के साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला है कि ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका की हिमचादरें टूट रही हैं, आर्कटिक प्रदेशों के अस्थायी हिमावरण पिघल रहे हैं, महाद्वीपीय हिमनदियों के आकार तथा लंबाई में संकुचन हो रहा है, तथा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में अवस्थित उच्च पर्वतों की हिमरेखा में ऊर्ध्वगमन हो रहा है। ज्ञातव्य है कि अंटार्कटिका के प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर मापन एवं तथा निगरानी की जा रही है, जैसे धरातली सतह एवं वायु के तापमान की माप, आइस कोर विश्लेषण, हिमचादरों एवं हिमनदियों के आकार एवं मोटाई की नाप, हिमचादरों के पिघलने एवं संकुचन की दर आदि की माप, अंटार्कटिका की हिमचादरों की नियमित निगरानी से ज्ञात हो चुका है कि उनमें 100 मीटर प्रति वर्ष की दर से संकुचन हो रहा है। सन 1950 ईस्वी के बाद से पश्चिमी अंटार्कटिका प्रायद्वीप में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि दर्ज की गई है। सन 1940 ईस्वी से अंटार्कटिका प्रायद्वीप के हवाई छायाचित्रों तथा सैटेलाइट इमेजेस के अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के एलिसन कुक का कहना है कि अंटार्कटिका प्रायद्वीप के लगभग सभी हिमनदियों में निर्वर्तन हो रहा है। कुल 244 हिमनदियों का अध्ययन किया गया, जिनमें से 87% हिमनदियों में पिघलने से निर्वर्तन की प्रवृत्ति देखी गई है। उक्त सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि सन 1950 ईस्वी के बाद से अंटार्कटिका प्रायद्वीप के औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इतने पर्याप्त साक्ष्य सुलभ हैं कि जिनके आधार पर प्रमाणित हो जाता है कि अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड में हिमशेल्फ टूट रहे हैं तथा बड़े बड़े प्लावी हिमखंडों का निर्माण हो रहा है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने सन 1950 से लिए गए 2000 हवाई छायाचित्रों तथा 100 से अधिक अत्याधुनिक सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर 244 हिमनदी का अध्ययन करने के बाद 2005 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1950 से अंटार्कटिक क्षेत्र में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हुई है तथा 244 हिमनदों में से 212 में पर्याप्त सिकुड़न हुई है। सन 2000 से इन हिमनदों में 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से निर्वर्तन रिट्रीट हुआ है। इन हिमनदों में प्रति वर्ष 250 घन किमी की दर से हिम का क्षय हो रहा है। बेरिंग सागर तथा आर्कटिक सागर के ऊपर हिमावरण के नियमित अवलेखन से पता चलता है कि इन हिमावरणों में यद्यपि मंद गति से परंतु नियमित रूप से संकुचन हो रहा है। जैसे बेरिंग सागर के हिमावरण में 1960 से अब तक 5% का ह्रास हुआ है। आर्कटिक सागर के ऊपर हिमावरण के क्षेत्र में सन 1978 ईस्वी से 90,000 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कोलोराडो में स्थित अमेरिकी नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर के विद्वान वाल्ट मीर की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक 2005-06 में हिम क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ ह्रास हुआ है। भूमंडल के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर तापमान में 2 गुनी वृद्धि हो रही है। 21वीं सदी के अंत तक यहाँ के तापमान में अतिरिक्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी तथा 2030 ईस्वी तक आर्कटिक सागर का अधिकांश हिम विलुप्त हो जाएगा। हिमालय, आल्पस तथा एंडीज पर्वतों की हिमनदियों के पिघलने तथा निर्वर्तन के अनेक साक्ष्य सुलभ हैं। कतिपय उदाहरणों के माध्यम से पर्वतीय हिमनदियों के पिघलने एवं निर्वर्तन को सत्यापित किया जा सकता है। पिछली शताब्दी में यूरोप के अल्पाइन हिमनदियों की लंबाई एवं आयतन में 50% की कमी आई है। दूसरा, पेरू में एंडीज पर्वत की हिमनदियों में विगत सदी के अंतिम 3 दशकों अर्थात 1978 से 2000 ईस्वी तक ऊपरमुखी निर्वर्तन में 7 गुना वृद्धि हुई है। तीसरा, रूसी काकेशस पर्वत के हिमनदों की लंबाई में सन 1960 से हिमद्रवण के कारण 50% ह्रास हुआ है। चौथा, चीनी त्यानशान पर्वतीय हिमनदों के पिघलने के कारण 1960 के बाद से उनके आयतन में 25% की हानि हुई है। पांचवा, न्यूजीलैंड के दक्षिणी आल्पस के हिमनदों में तापमान में वृद्धि के कारण पिघलाव के कारण 100 मीटर का ऊपरमुखी निर्वर्तन हुआ है। छठा, माउंट केनिया के अधिकांश हिमनद विगत शताब्दी में समाप्त हो गए हैं। तंजानिया के माउंट किलिमंजारो से हिमावरण लगभग समाप्त हो गया है। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया है कि भारत में हिमालय के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिस कारण उनमें तीव्र रफ्तार से ऊपरमुखी निर्वर्तन हो रहा है। पहला, अहमदाबाद स्थित सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के मरीन एंड वाटर रिसोर्स ग्रुप के वैज्ञानिकों द्वारा साप्ताहिक सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर हिमाचल प्रदेश के बासपा बेसिन के 19 हिमनदों के 2000-2002 के बीच मध्य अध्ययन के आधार पर यह परिणाम सामने आया कि इन हिमनदों के द्रव्यमान में 2001 में 90 घन मीटर तथा 2002 में 78 घन मीटर का ह्रास हुआ। इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि यदि हिमनदियों के निर्वर्तन की यह दर चलती रही तो हिमाचल प्रदेश के सारे हिमनद सन 2040 तक समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, सैक के अध्ययन से यह पता चला है कि सन 1962 से 2001 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में 5000 मीटर की ऊंचाई तक वाली हिमनदियों के हिमावरण में 24% तथा 5000 मीटर से ऊपर स्थित हिमानियों के हिमावरण में 14% का क्षय हो गया है। तीसरा, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। ज्ञातव्य है कि मिट्टियों में भारी मात्रा में कार्बन तथा मीथेन दबी है। अमेरिकी नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के विज्ञानी डेविड लॉरेंस के ने आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की प्रवृत्ति का अध्ययन किया है। 2005 ईस्वी में प्रकाशित लॉरेंस की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट की ऊपरी परतों में विश्व भर की मिट्टियों में दबे पड़े समस्त कार्बन का 30% भंडारित है। लॉरेंस के अनुसार यदि भूमंडलीय ऊष्मन की वर्तमान दर को रोका नहीं गया तो सन 2100 तक 3.5 मीटर की गहराई तक 1.5 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र का परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएगा, जिस कारण भारी मात्रा में कार्बन मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट में और अधिक तेजी आ जाएगी। परिणामस्वरूप तापमान में आशातीत वृद्धि होने से जलवायु में नाटकीय परिवर्तन हो जाएगा। साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में पिघलने से उसमें दबी मीथेन का विमोचन हो रहा है, जिस कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। सन 2006 में किए गए शोधों के परिणामों से ज्ञात हुआ है कि विश्व के समस्त परमाफ्रॉस्ट में 450 मिलियन टन मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दबी पड़ी है। यदि वर्तमान दर पर परमाफ्रॉस्ट पिघलता रहा तो उसमें दबी पड़ी मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन हो जाएगा तथा भूमंडलीय तापमान में अनुमान से अधिक वृद्धि हो जाएगी। ज्ञातव्य है कि मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तापमान में वृद्धि करने की 23 गुना अधिक क्षमता होती है। चौथा, भूमंडलीय ऊष्मन के अन्य संकेतक। कतिपय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय रोगों जैसे मलेरिया, कॉलरा, प्लेग, डेंगू ज्वर, पीला ज्वर आदि के मध्य एवं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में प्रसार से भूमंडलीय ऊष्मन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। ज्ञातव्य है कि इन रोगों की बैक्टीरिया, कीड़े, वायरस आदि चरम मौसमी दशाओं जैसे अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क मौसम, अत्यधिक गर्म एवं आर्द्र मौसम आदि में पनपते तथा विकसित होते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन के कारण मध्य एवं उच्च अक्षांशों में चरम मौसमी दशाओं का सूत्रपात होता है। शीतोष्ण कटिबंधी देशों में कालरा पेरू में 1991 ईस्वी में, डेंगू ज्वर ऑस्ट्रेलिया में 1994 ईस्वी में आदि रोगों का महामारी के रूप में फैलना मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के ऊष्मन का प्रमाण है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी रोगों का विश्व के 42% भाग पर प्रसार है, जो बढ़कर 60% तक हो सकता है। यदि धरातली सतह के औसत तापमान में सन 2002 के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। अंटार्कटिका के पेंगुइन की संख्या 20वीं सदी के अंतिम 3 दशकों में भूखमरी के कारण लगभग 40% की कमी दर्ज की गई है, जिससे भूमंडलीय औसत तापमान में वृद्धि होने तथा उसके द्वारा भूमंडलीय ऊष्मन के संकेत मिलते हैं। ज्ञातव्य है कि प्राणी प्लैंकटन जू प्लैंकटन पेंगुइन के प्रमुख आहार हैं। सागरी जल के तापमान में वृद्धि के कारण प्राणी प्लैंकटन में भारी कमी हो जाती है, अतः प्राणी प्लैंकटन के प्रचुर मात्रा में अभाव के कारण पेंगुइन भूख से मर जाते हैं। प्रवालों का विरंजन के कारण सामूहिक विनाश भी भूमंडलीय ऊष्मन का प्रमुख लक्षण है। 1997 और 98 ईस्वी में उष्णकटिबंधीय महासागरों के 60 देशों एवं द्वीपीय राष्ट्रों में प्रवाल विरंजन के कारण प्रवालों के बड़े पैमाने पर विनाश की घटना हुई। ज्ञातव्य है कि 1998 ईस्वी में अंडमान सागर के औसत तापमान में 2 सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से 75% प्रवाल भूखमरी से विनष्ट हो गए। उल्लेखनीय है कि एल्गी प्रवालों के प्रमुख भोजन हैं। सागरी जल के औसत तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से हरे रंग के शैवाल श्वेत हो जाते हैं, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवाल समाप्त होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप भोजन के अभाव में प्रवाल भी मरने लगते हैं। सागरी जल के अभिलेखित तापमान के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सागरी जल के औसत तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, जिस कारण सागर तल में 10 से 25 सेंटीमीटर तक की बढ़त दर्ज की गई है। अनुमान लगाया गया है कि यदि सागर तल में वृद्धि की यह दर चलती रही तो 21वीं सदी के अंत तक सागर तल 1 मीटर ऊपर उठ जाएगा। अलास्का तथा साइबेरिया में फर्माफ्रास्ट के लगातार पिघलने से उसके क्षेत्रीय विस्तार में हो रहे लगातार संकुचन से भी भूमंडलीय ऊष्मन का आभास होता है। अलास्का में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से पता चलता है कि फर्माफ्रास्ट की ऊपरी सतह यानी सक्रिय सतह के तापमान में 0.6 सेंटीग्रेड से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हुई है, जिस कारण फर्माफ्रास्ट की ऊपरी सतह में व्यापक हिमद्रवण हुआ है। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में एवं अक्षांशीय विस्तार की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाओं में ध्रुवों की ओर लगातार वृद्धि भूमंडलीय ऊष्मन का प्रबल साक्ष्य है। अमेरिकी मौसम उपग्रहों द्वारा वायुमंडलीय तापमान के अंकन से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सन 1979 से विषुवत रेखा के दोनों ओर 20 अक्षांश की वृद्धि हुई है। जेट स्ट्रीम में ध्रुवों की ओर हो रहा लगातार खिसकाव भी भूमंडलीय ऊष्मन को प्रमाणित करता है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के निम्न दो कारण एवं प्रक्रियाएं हैं। पहला ओजोन क्षरण, दूसरा हरित गृह प्रभाव। पहला ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लिएशन। ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। इसकी ऊपरी सीमा 55 किमी तक भी बताई जाती है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। 80 से 100 किलोमीटर के बीच सौरिक परावैगनी अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ऑक्सीजन के अणु में बिलगाव होता है। इस तरह अलग किए गए एटम अलग अलग रूप में अन्य ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। स्मरणीय है कि 80 से 100 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में घनत्व इतना कम होता है कि इस तरह के तीन अणु टकराव संभव नहीं है तथा 35 किमी के नीचे भी यह क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि इस ऊंचाई के ऊपर ही पराबैंगनी किरणों का अवशोषण हो जाता है। अतः 30 से 60 किमी के मध्य में O तथा O2 का टकराव अधिक होता है। ज्ञातव्य है कि ऑक्सीजन गैस स्वयं में अस्थिर होती है तथा इसका विनाश भी हो सकता है। यदि पहला, इस ओजोन का मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन से टकराव हो तो ऑक्सीजन पुनः निर्मित तथा मुक्त हो जाती है। दूसरा, जब इस ओजोन पर विकिरण का प्रभाव हो, इस ओजोन का ऑक्सीजन तथा ओजोन का ऑक्सीजन में रूपांतरण प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल क्रियाओं द्वारा होता है। स्पष्ट है कि इस तरह की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन के ओजोन तथा ओजोन के पुनः ऑक्सीजन में रूपांतरण की क्रिया द्वारा उनमें संतुलन 40 किलोमीटर से ऊपर होता है। 35 किलोमीटर के पास ओजोन मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है तथा ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य रहता है। वायुमंडल में ओजोन का यह अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि यह एक रक्षा आवरण का कार्य करती है। इस आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणों परिवर्तन मंडल तथा पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यह गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती है। यदि ये किरणें धरातल तक पहुंच जाती तो तापमान इतना अधिक हो जाता कि किसी भी प्रकार का जीव भूतल पर संभव नहीं हो पाता। विज्ञान में तरक्की तथा नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन मंडल में रिक्तिकरण या क्षरण हो रहा है। यह क्षरण वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाले वायुयान, सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट जेट, संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा कॉनकॉर्ड ब्रिटेन व फ्रांस में से निकले नाइट्रोजन ऑक्साइड स्प्रे कैन डिस्पेंसर, वातानुकूलक एयर कंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त तथा निश्रित क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि द्वारा होता है। स्मरणीय है कि सुपरसोनिक जेट 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ते हैं। इनसे निकले नाइट्रोजन ऑक्साइड से ओजोन में ह्रास होता है। एक अनुमान के अनुसार यदि 500 सुपरसोनिक जेट का दल प्रतिदिन उड़ान भरता है तो ओजोन में 12% तक ह्रास हो जाएगा, जिस कारण धरातल पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष 120,000 चर्म कैंसर बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में प्रसाधन सामग्रियों तथा शीतलन आदि में प्रयुक्त क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन आदि संयुक्त रूप से समताप मंडल में उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां तक ओजोन मंडल रहता है तथा सौरिक विकिरण की परावैगनिक किरणों द्वारा इसका विघटन होता है एवं क्लोरीन इस यौगिक से अलग होकर ओजोन को नष्ट करती है। इस तरह स्पष्ट है कि आधुनिक उपकरणों के माध्यम से मनुष्य स्वयं अपने लिए पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर रहा है। दूसरा, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। पहला, परिभाषा तथा तात्पर्य। शीत प्रधान देशों में जहां पर शीतकाल में पर्याप्त सूर्यातप का अभाव होता है, पौधे खासकर फलों एवं सब्जी के पौधों के लिए ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है। इन ग्रीन हाउस के शीशे इस तरह के होते हैं कि उनसे होकर सौरिक दृश्य प्रकाश अंदर पहुंच जाता है, परंतु इन घरों से दीर्घ तरंग अवरक्त किरणें बाहर नहीं जा पाती, अर्थात ग्रीन हाउस के कांच सौरिक विकिरण को तो अंदर आने देते हैं परंतु अंदर से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इस कारण से ग्रीन हाउस में ऊष्मा का लगातार संचय होता रहता है। इस समस्त प्रक्रिया के परिणाम को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वैज्ञानिक परिवेश में ग्रीन हाउस को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापमान प्रोग्रेसिव वार्मिंग को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प ग्रीन हाउस की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि ये सौरिक विकिरण को धरातल तक पहुंचने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करती, परंतु पृथ्वी से होने वाले बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण खासकर अवरक्त किरणों को सोख लेती है तथा उन्हें भूतल की ओर पुनः प्रत्यावर्तित कर देती है, जिस कारण धरातली सतह निरंतर गर्म होती रहती है। ग्रीन हाउस की विशेषता वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजनित गैसें तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हरित गैसों की श्रेणी में आती है, क्योंकि ये गैसें पृथ्वी से बाहर की ओर होने वाले दीर्घ तरंग विकिरण की 8 से 13 माइक्रोन बैंड वाली तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं तथा भूतल को गर्म करने में मदद करती हैं। निष्कर्ष के रूप में यह व्यक्त किया जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प तथा हैलोजनित गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव का अंतिम परिणाम होता है धरातली सतह एवं निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, क्योंकि ये गैसें सौरिक विकिरण तरंगों के लिए प्रायः पारदर्शक होती हैं, जिस कारण सौरिक विकिरण तरंगें बिना रोक टोक के धरातल तक पहुंच जाती हैं। परंतु ये गैसें पृथ्वी से होने वाले अधिकांश विकिरण को सोख लेती हैं तथा भूतल एवं उसके ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल को गर्म करती हैं। स्पष्ट है कि हरित गृह ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख स्रोत। वायुमंडल में जो गैसें पृथ्वी से होने वाले विकिरण को पुनः पृथ्वी सतह पर वापस भेज देती हैं या उन्हें सोख लेती हैं, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक महत्वपूर्ण हरित गैस है। मनुष्य द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में विमोचन होता है। निम्न स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का जनन होता है तथा इसका वायुमंडल में भंडारण होने से CO2 का सांद्रण बढ़ता जाता है। तापीय विद्युत उत्पादन